देसी गंध पर देसी हवाएं। अभी तो मेरे लिए इंग्लैंड यात्रा का उद्देश्य रंगमंच का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वदेश लौटना और उस प्रशिक्षण का अपने रंगकर्म के लिए उपयोग करना था, जिससे कि वे अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश के रंगकर्म में अधिक कलात्मक रूप में प्रस्तुत कर सके। उस समय देश में नाटक प्रशिक्षण का कोई बड़ा संस्थान नहीं था। इब्राहिम अलकाज़ी मुंबई में व्यक्तिगत स्तर का एक प्रशिक्षण केंद्र का संचालन कर रहे थे, जहाँ से श्रीमती विजया मेहता जैसे विशिष्ट रंगकर्मियों ने प्रशिक्षण लिया था। इब्राहिम अलकाज़ी स्वयं रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स राडा से प्रशिक्षित थे और वे पाश्चात्य पद्धति के श्रेष्ठ सूत्रों, अवधारणाओं, तकनीकों के आधार पर यहाँ के रंगकर्मियों को प्रशिक्षित कर रहे थे। अभी तमीर का यह विचार था कि पश्चिमी नाट्य अवधारणा और आधुनिक तकनीक का ज्ञान किसी ऐसे संस्थान से सीधे प्राप्त किया जाए जो उनके संकलन के लिए विशेष रूप से सहायक हो सके। उस समय उसके मन में यह बात एकदम साफ थी कि उन्हें पाश्चात्य अवधारणाओं तथा तकनीकों का अनुसरण नहीं करना है, बल्कि उनके श्रेष्ठ तत्वों को सीख कर और समझ कर अपने अनुसार व्यवहारिक रंगकर्म के लिए प्रयोग करना है, जिससे भारतीय परंपराओं के विखंडित एवं विस्तृत काल रूपों को आधुनिक संवेदनाओं की मुख्य धारा से जोड़ सके। यह एक अलग अंदाज की बात थी। सामान्यतः रंगकर्मी जिस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटते हुए अपने प्रयोगों में उन्हीं पद्धतियों, अवधारणाओं और तकनीकों का अनुसरण करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके एक अनुसरण में कोई मौलिक तत्व नहीं होता है, लेकिन उनके वैचारिक सूत्र उसी पद्धति पर आधारित होते हैं। उनके रंगकर्म पर उस प्रशिक्षण संस्थानों की छाप होती है जो यह स्पष्ट करती है कि उनके रंगकर्म का मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ है। भले ही उनके रंगकर्म की मौलिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि संदर्भ में महत्वपूर्ण या महत्वहीन सिद्ध करते हैं, इब्राहिम अलकाज़ी की मौलिक सूझबूझ और भारतीय सामाजिक परिवेश की गहरी समझ उनकी सभी प्रस्तुतियों में साफ नजर आती है। इसी कारण वे अंधायुग और तुगलक जैसे अविस्मरणीय प्रस्तुतियां दे सके। इसके अतिरिक्त भारतीय रंगमंच के लिए उनका अवदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने पाश्चात्य पद्धतियों और अवधारणाओं का अंधानुकरण नहीं किया और उनके श्रेष्ठ तत्वों का आधुनिक भारतीय रंगमंच को समृद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया। यह तथ्य अत्यंत श्लाघनीय है और इसे हबीब तनवीर के प्रसंग में कम करके आंकना एकदम गलत बात होगी। हमारा प्रयोजन केवल उस बात को रेखांकित करना है जो हबीब तनवीर प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण पर इस प्रकार के प्रति सजग थे कि उन्हें वापस अपने देश में जाकर किस तरह का रंगकर्म करना है। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने सहायक और नायक तत्वों के वो आत्मसात कर रहे थे, लेकिन अपने प्रयोजन में बाधक तत्वों के प्रति भी उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। इस प्रसंग को विस्तार से चर्चा करने से पूर्व यदि हम उनकी इस विदेश यात्रा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रसंगों का विवेचन करें तो युक्ति संगत होगा। विदेश में जाकर विधिवत प्रशिक्षण के बाद आगरा बाजार के प्रदर्शन के बाद उठी जामिया मीडिया में प्रस्तुत किए गए इस छोटे से रूपक में ऐसे अनेक तत्व थे जो प्रबुद्ध दर्शकों के लिए केवल आह्लादकारी ही नहीं थे, वरन उनसे असीम संभावनाएं भी थी। उस प्रबुद्ध दर्शक वर्ग में बेगम कुसिया जैदी भी थी, जिन्हें हबीब तनवीर की इस प्रस्तुतिकरण में कुछ ऐसा नजर आया जिसका आस्वाद एकदम नया था और इसकी ओर सामान्य दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी भी था। उनके सहयोग और सुझाव पर इस रूपक का दूसरा प्रस्तुतिकरण नई दिल्ली के ईस्टर्न कोर्ट के खुले प्रांगण में हुआ। आगरा बाजार के प्रस्तुति के विकास क्रम ने हबीब तनवीर के प्रशंसकों की संख्या में आशाशित अभिवृद्धि की और रंगमंच के विधिवत प्रशिक्षण के लिए नया द्वार खोल दिया। इस संबंध में उन्होंने लिखा है, सन 1955 में मैं विदेश गया। मुझे ब्रिटेन में थिएटर प्रशिक्षण में आगे के प्रशिक्षण की एक योजना के अंतर्गत 300 रुपये माहवार की एक छात्रवृत्ति मिली जो देश के भीतर ही आगे प्रशिक्षण के लिए थी। मैं नहीं जानता था कि देश के भीतर कोई प्रशिक्षण है जिसकी मुझे ज़रूरत है। उस वक्त मुझे थिएटर में एक लंबा अनुभव हो चुका था, कम से कम 9 बरस का। बम्बई में एकमात्र संस्थान अलकाज़ी का था और मैंने नहीं सोचा कि उसमें मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ करना है। मैंने महसूस किया कि जहाँ से अलकाज़ी ने सीखा था वहीं मुझे जाना चाहिए। रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में मेरी सहायता के लिए ब्रिटिश काउंसिल आ गया। आने जाने के मार्ग व्यय की समस्या थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति थे, मैं उन्हें जानता था। वे मेरी शायरी और नाटकों के परिचित थे, वे नौजवानों को सहायता करते थे और फिर मैं एक तरह से अलीगढ़ विश्वविद्यालय का भूतपूर्व छात्र भी था। भूतपूर्व छात्रों के लिए सुरक्षित कोर्स में से उन्होंने मुझे आने जाने की धनराशि तो दी। मैं समुद्री जहाज से इंग्लैंड गया और राडा में भर्ती हुआ। राडा का पाठ्यक्रम कम से कम 2 साल का था, उच्च प्रशिक्षण के लिए 1 वर्ष का और विशेष पाठ्यक्रम था। आज तक इस अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, पाठ्यक्रम में अवश्य बदले हुए संदर्भ और रंगमंच चिन्हित नवीन होने वाले प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए समय पर परिवर्तन संशोधन होते रहे हैं, लेकिन राडा के पाठ्यक्रम में सबसे अधिक जोर शेक्सपियर के नाटकों और अंग्रेजी भाषा के प्रामाणिक उच्चारण पर दिया जाता है। आज भी बदस्तूर जारी है। अपने बीबीसी लंदन के कार्यकाल के दौरान मुझे राडा के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण का सहयोग प्राप्त हुआ। शेक्सपियर के 2 नाटकों को पढ़ने और उन्हें मंचित करने के लिए आईएम्बिक पेंटामीटर, शेक्सपियर के नाटकों के छंद योजना की बुनियादी जानकारी मुझे वहीं प्राप्त हुई। उन पंक्तियों को लिखते हुए मुझे लगभग 25 वर्ष पुराने अपने अनुभवों की याद आ रही है, जो शायद अस्वाभाविक नहीं। राडा प्रशिक्षण के लिए केवल इंग्लैंड या ब्रिटेन ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के रंगकर्मी आते रहे हैं। अभी तनवीर के समय में भी यही था। सुदूर देशों के रंगकर्मियों का अंग्रेजी ज्ञान उनके अपने देश और समाज के उद्देश्य से ठीक होता था, लेकिन वे उस प्रामाणिक अंग्रेजी के उच्चारणों से कतई परिचित नहीं थे जिसे क्वींस इंग्लिश कहा जाता है। उसका एक निश्चित व्याकरण है जिसके सही प्रयोग से अंग्रेजी भाषा के अंतर्निहित सौंदर्य को नाटक के मंचन में अत्यंत कलात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाने की संभावनाएं बलवती हो जाती है। विश्व भर से आए हुए युवा रंगकर्मी प्रशिक्षणार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा का यह व्याकरण अत्यंत लाभदायक भी होता है। इसी के आधार पर शेक्सपियर के जैसे महान नाटककारों को नाटकों के साथ न्याय करने में सफल हो सकते हैं। अंग्रेजी भाषा पर अपना अधिकार समझने वाले अधिकांश विदेशी, जिसमें भारतीय भी शामिल है, भाषा के उच्चारण के विषय में प्रामाणिक नहीं होते। हमारे देश में बंगाली या तमिल या मराठी भाषी हिंदी विद्वानों के अंग्रेजी के उच्चारण में जबरदस्त अंतर होता है। यह स्वाभाविक भी है और प्राकृतिक भी। उस स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया को छोड़कर यदि हम प्रयत्नपूर्वक ऐसे प्रणाली को अपनाते हैं जो हमारी प्रकृति और स्वभाव को अनुरूप नहीं है, तो हम एक नितांत बनावटी और आरोपित उच्चारणों की ओर उन्मुख होते हैं। राडा के पहले वर्ष के प्रशिक्षण के साथ ही अभी ने अनुभव कर लिया था कि जहाँ तक रंगमंच की व्यापक और बहुस्तरीय पद्धतियों और उनकी तकनीकों की समझ का प्रश्न है, वे उसे ग्रहण कर चुके हैं। साथ ही उनके प्रशिक्षण का दूसरा पक्ष जो विशुद्ध उच्चारण से संबंधित था, वह उनकी किसी काम का नहीं। शेक्सपियर के नाटकों को मंचित करने की प्रमाणिक पद्धति या अंग्रेजी भाषा के सही उच्चारणों को सीख लेने पश्चात भी अपनी स्वाभाविक भाषा से कुछ दूर चले जाएंगे और भाषा का ऐसा उच्चारण उन्हें अपनी धरती से ही उखाड़ फेंक देने का कारण बन सकता है। अगर ऐसी भाषा को सीख कर उसका उपयोग भी अपने देश में करेंगे तो वे पूरी तरह से आरोपित और बनावटी होगा। भले ही इस प्रामाणिक प्रशिक्षण के बाद वे संभ्रांत वर्ग को प्रभावित करने में सफल हो जाएं, लेकिन अपने देश के अधिकांश जनता के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएंगे। राडा के प्रशिक्षण के दौरान उनकी सोच में उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि केवल 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद ही उन्हें राडा छोड़ देना चाहिए। उनके शब्दों में, मैंने समझ लिया कि उससे मेरे लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। मैंने अनुभव किया कि भाषा का संबंध वाणी से है, जो गतिविधियाँ या कार्य व्यापार से जुड़ी है। इसलिए सीधी साधी बात है कि भाषा का परिवर्तन क्रिया या गतिविधि में भी परिवर्तन ला देता है और चरित्र और सांस्कृतिक लोकाचार में भी। लोग अपने शब्दों को मिलाकर कुछ अस्पष्ट सा उच्चारण करते हैं, जैसा कि स्पेनी लोग करते हैं। हमारी क्रियाएं, हमारा अंग संचालन और हमारे हाथ की गतियां उत्तर भारत से दक्षिण भारत में ही बदल जाती है। राडा में सिखाया जाता है कि गति की शुरुआत मेरुदंड से होती है। भारतीय आंगिक गतियां रीढ़ की हड्डी शुरू नहीं होती। हमारी संस्कृति शब्द के सभी अर्थों में कहीं कहीं अधिक सक्रिय है। मुझे कुछ कक्षाओं में अपने डब्ल्यू के उच्चारणों को दुरुस्त करने के लिए बैठना पड़ा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी वृत्ति वी और डब्ल्यू के उच्चारणों को अंतर नहीं रखने की है। तो मैं विभागीय अध्यक्ष के पास गया, जो शेक्सपियर पर बहुत बड़े अधिकारी विशेषज्ञ थे। एक आदरणीय वृद्ध सज्जन जो अब तक इंतकाल फरमा चुके होंगे, वे मेरे स्कूल छोड़ने की बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी सीख चुका हूँ। मैंने कहा काफ़ी सीख चुका हूँ और मुझे बहुत सारा ज्ञान हासिल हो चुका है। अगर मैं और अधिक सीखता हूँ तो यहाँ और अधिक रुकता हूँ, कुछ और ज़्यादा समय व्यतीत करूँगा तो मैं एक अभिनेता के रूप में आडम्बरपूर्ण और अस्वाभाविक हो जाऊँगा। मैं अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपनी भाषा में रंग सक्रियता जारी रखने के लिए वापस आऊँगा और मेरी भाषा में यहाँ प्रयुक्त होने वाले नियम और सिद्धांत काम में नहीं आएंगे। वे इस बात को खुलेपन से तस्लीम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप सात समुद्र पास देश में एक समय सम्मानित संस्था में आते हैं जिसकी एक लंबी परंपरा है और आप हमारे नियम तोड़ना चाहते हैं। कोई भी बीच में छोड़ नहीं सकता। हम आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। इसके बावजूद अभी तभी अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो पूरी तरह से अपने मंतव्य के प्रति आश्वस्त थे। अपने संकल्प के लिए वो निरंतर संघर्ष करते रहे। ब्रिटिश काउंसिल ने उनकी बात को नकार दिया। इतना तक कहा कि अगर उन्होंने राडा छोड़ने की बात भी की तो उनके छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जा सकती है। यह बड़ा जोखिम भरा काम था, लेकिन अभी तभी इस जोखिम को उठाकर वे अपने मकसद को पूरा करने की ठान चुके थे। वे चाहते थे कि अपने अध्ययन काल के दूसरा वर्ष ऐसे संस्थान में जिसका प्रशिक्षण उन्हें भारत लौटे में मदद कर सके। अंततः ब्रिटिश काउंसिल की नाटक प्रकोष्ठ की एक महिला उनकी बात पूरी तरह समझ गई। उनकी बदल राडा के नवनियुक्त निदेशक जॉन फरलार्ड को हबीब तनवीर की बातों में गहरी सूझ और ईमानदारी नजर आई। उन्होंने हबीब तनवीर की 1 वर्ष के प्रशिक्षण की परीक्षा ली और इसकी पूरी तरह संतुष्ट होकर राडा छोड़ने की अनुमति दे दी। राडा से मुक्त होने के बाद वे ओल्ड विक थिएटर में चले गए, जहाँ उन्होंने मुखौटा बनाने, मंच सज्जा, नाट्य लेखन और रंग प्रस्तुति के विभिन्न पक्षों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समाप्त हबीब तनवीर का यह अभिष्ट था। इस प्रशिक्षण में उन्हें लगा कि यही वह मुख्य तत्व जिसका उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करना है। उन्होंने इस प्रशिक्षण के प्रत्येक क्षण का भरपूर आनंद लिया। ओल्ड विक थिएटर के निदेशक डंगन रॉस के कुछ सूत्र हबीब तनवीर के रंगकर्म को प्रभावित करने में सिद्ध हुए, जिन्होंने उन्हें रंगकर्म की नई समझ दी। उन्होंने कहा, ब्रिस्टल ओल्ड विक में हमारे एक टीचर थे डंगन रॉस। मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ, और लासानी दीना को भी। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रोडक्शन का क्या मतलब? प्रोडक्शन का मतलब हुआ नाटक की कहानी को कह जाना। नाटक तभी फेल होते हैं जब अपनी कहानी ठीक से नहीं कही जाती। आप एक नाटक पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप उसे करना चाहते हैं। पहली बार पढ़ने पर जो जिस रूप में अच्छा लगता है उसे पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आपको सहज रूप में अच्छी लगी वो औरों को भी लगेगी। उस बुनियादी असर को रिकैप्चर करना ही, दोबारा पकड़ना ही प्रोडक्शन है। रिहर्सल के दौरान बार बार सुनकर देख कर आपका मन बदल सकता है, लेकिन उस बुनियादी असर को मत छोड़िए। डंकन डास की ये सूत्र व्याख्या की मांग करते हैं। पहली बात तो यह है कि आप निर्देशक के नाते किसी एक खास नाटक को क्यों चुनते हैं? यदि आप किसी खास प्रोड्यूसर या ऐसी संस्थान के लिए नाटक करते हैं जो धन लगाने वाला हो, तो शायद नाटक के चुनाव में आपकी पसंद बेमानी हो, इसलिए उसके बारे में किसी तर्क की गुंजाइश नहीं। लेकिन आप ऐसी स्थिति में कि मंचन के लिए नाटक का चुनाव आप स्वयं कर रहे हैं, तो फिर आपका काम ज़्यादा चुनौती भरा हो जाता है। यदि आप किसी ऐसे नाटक को पढ़ते हैं जो अत्यंत प्रसिद्ध है और जिसे अनेक निर्देशक मंचित कर चुके हैं, तो आप फिर शायद वह नहीं चाहेंगे कि आप अपने उन्हीं अनुभव को दोहराएं जो उस नाटक के मंचित प्रस्तुति के बाद आपको हुआ है। संभवतः है कि आप उस नाटक के पाठ को कुछ ऐसा नजर आए जिसे आप एक नई व्याख्या के साथ प्रस्तुत करना चाहें। अनेक विश्व प्रसिद्ध नाटकों के साथ ऐसा ही होता है। कालजयी नाटक बदलते हुए संदर्भों और स्थितियों में भी नए विवेचन विश्लेषण के अनेकानेक संभावनाओं से संपुष्ट होते हैं, तो यह नया विश्लेषण आपका मंतव्य बन जाता है। आप इस नए अर्थ को दर्शकों को संप्रेषित करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपका चुना हुआ नाटक कोई कालजयी कृति नहीं है, वह एक नितांत नया नाटक है जिसके पहले ही पाठ में आपको कहीं खास कारणों से मंचित करने के लिए प्रेरित किया हो। यह भी संभव है कि उसे मंचित करने की कई नई चुनौतियों ने आपको उत्तेजित किया हो और आप एक नए अनुभव को संप्रेषित करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। स्पष्ट है कि मंचित करने से पूर्व उस नाटक के पहले, दूसरे या तीसरे पाठ में आप उस आनंद को व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त करते हैं जिसे आप अंततः दर्शकों तक संप्रेषित करना चाहते हैं। लेकिन अधिकांश स्थितियों में यह होता है कि पूर्वाभ्यास के दौरान नाट्य आलेख में कुछ ऐसी संभावनाएं उद्घाटित होने लगती हैं जिनकी ओर संभवतः आपका ध्यान नाटक के पाठ के समय नहीं गया हो। पूर्वाभ्यास के दौरान उद्घाटित वह नया अर्थ या मंतव्य आपको इतना अधिक आकर्षित कर सकता है कि आप अपनी पूर्व निश्चित धारा को छोड़कर किसी नए अर्थ या नए आस्वाद की ओर उन्मुख हो जाते हैं। परिणामतः जब नाटक पूर्वाभास के अंतिम चरण तक पहुंचता है, तो आप कई बार महसूस करते हैं कि जहां से आपने शुरू किया था या नाटक के पाठ के दौरान जिस आनंद से आप अभिभूत हुए, तो वह कहीं छिटक कर दूर जा पड़ा है और वह आलेख आपको किसी दूसरी दिशा की ओर ले जा रहा है। डंकन रॉस का कहना था कि ऐसी स्थिति में इस नए आवेग में बहकर अपने मूल आस्वाद से विमुख होना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में निर्देशक को फिर अपने पहले पाठ की तरफ लौटना चाहिए और अपने मूल प्रयोजन की तलाश करनी चाहिए। यदि पूर्वाभ्यास के दौरान समाधवता स्थितियों में कुछ नए संदर्भ उद्घाटित हो रहे हैं, तो आगे मूल मंतव्य को अधिक सहजता तक कलात्मकता के साथ संप्रेषित करने में समर्थ हैं, तो स्थिति आपकी अत्यंत अनुकूल है और उसे स्वीकार करने में कतई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अपनी नज़रों से नाटकों को उस मूल प्रयोजन या प्राथमिक आनंद की अनुभूति को ओझल नहीं होने देना चाहिए। डंकन रॉस द्वारा कही गई यह बात थी कि दूसरी थी कि हबीब तनवीर ने अपनी गांठ में बांध लिया। यदि हबीब तनवीर के समूचे रंगकर्म को गौर से देखें, तो विशेषता हमें उनके हर प्रस्तुतिक्रम नजर आती है। अनुदित या रूपांतरित नाटकों में ही नहीं, उनके मौलिक नाटकों में भी यह बात साफ नजर आती है। डंकन रॉस की तीसरी बात तो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह बात नाट्य लेख के मंचन की तकनीक से संबंधित है। यूँ तो दृश्यबंध, मंच सज्जा, प्रकाश संयोजन और वेशभूषा के संबंध में पाश्चात्य दृश्य में अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं। जॉन गैसनर की प्रोड्यूसिंग द प्ले, मर्डेकाई गोर्लिको की न्यू थिएटर्स फॉर ओल्ड, गॉर्डन क्रेक की द आर्ट ऑफ द थिएटर, जॉन फर्नाल्ड की द प्ले प्रोड्यूस्ड आदि पुस्तकों में मंच सज्जा, प्रकाश संयोजन, रूप सज्जा, वेशभूषा आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। एरिक बेंटले, नॉर्मन मार्शल, शिनाय, ली साइमनसन आदि ने मंच सज्जा के बारे में महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन हबीब तनवीर के मंच सज्जा के लिए डंकन रॉस ने एक छोटा सा सूत्र दिया जो निश्चित हमारे निर्देशकों की एक बड़ी समस्या का समाधान करने में समर्थ है। डंकन रॉस के सूत्र हबीब तनवीर के लिए अंतिम उपदेश की तरह कारगर सिद्ध हुआ। वो कहते हैं, तीसरी बात उन्होंने यह कही कि कहानी की प्रगति में आड़े आने वाली मंच सज्जा या किसी भी चीज़ को निकाल देना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि नाटक के विकास में कौन क्या सहूलियत पैदा करता है। सिर्फ वही सबसे अच्छा दृश्यबंध, प्रकाश संयोजन और वेशभूषा है और कुछ नहीं। जहाँ तक मेरा सरोकार है, ये बातें बहुत असाधारण और विशेष थीं। उस समय डंकन रॉस के ये सूत्र हबीब तनवीर को असाधारण क्यों लगे? इसका रहस्य उस वक्त खुला जब अपने देश में आकर संस्कृति कालजयी नाटक में चिकटकों का प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। यह बात कम दिलचस्प नहीं है कि एक अंग्रेज रंग विशेषक आपको एक ऐसा सूत्र जो सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनीन होते हुए भी पूरी तरह कलात्मक और नाटक के मूल आस्वाद को संप्रेषित करने में सक्षम भी हो। मिट्टी की गाड़ी के प्रस्तुतिकरण में डंकन रॉस की इस उक्ति ने हबीब तनवीर की अनेक समस्याओं का समाधान किया, जिस तरह किया उसका जिक्र विस्तार से अगले अध्याय में किया जाएगा। बहरहाल महत्वपूर्ण यह है कि राडा छोड़कर ब्रिस्टल ओल्ड विक में प्रशिक्षण प्राप्त करना अभी तनवीर के लिए अधिक सार्थक सिद्ध हुआ। आधुनिक रंगमंच के विकास क्रम में जो सूत्र उन्हें भारतीय रंगमंच से प्राप्त नहीं हुए थे उन्हें खोजने और परखने में सफल हुए। ब्रिस्टल ओल्ड विक के एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने लंदन के जिस तीसरे महत्वपूर्ण संस्थान में अनुभव प्राप्त किया था वह था ब्रिटिश ड्रामा लीग। वहाँ उन्होंने नाट्य लेख के विवेचन और विश्लेषण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। नाटक पढ़ने और पढ़ाने के सूक्ष्म तथ्यों के समझ उन्होंने वहीं से प्राप्त किया। इस तरह उन्होंने लंदन में 2 वर्ष की छात्रवृत्ति का भरपूर उपयोग किया और उनके आगे काम में बहुत सहायक रहे। लेकिन इससे भी वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उस समय यूरोप विश्व रंगमंच का बहुत बड़ा केंद्र था। अपने लंदन प्रवास के दौरान वे बर्थोल्ट ब्रेस्ट के नए नाट्य सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे, किंतु उसके व्यवहारिक पक्ष को लेकर उनके मन में अनेक जिज्ञासाएं थी। इसलिए वे यूरोप के रंगमंच को देखने और समझने के लिए बेहद आकुल थे। लेकिन वे जानते थे कि यूरोप यात्रा के लिए उन्हें किसी किस्म की आर्थिक सहायता नहीं मिल सकती थी और इस यात्रा में धन की बहुत आवश्यकता थी। आपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए अभी तो इनको बहुत संघर्ष करने पड़े। ऐसा संघर्ष जिसका अनुमान लगाना भी कठिन। सचमुच अभी तो इनके बारे में ऐसा कुछ कहना बहुत प्रेरणादायक है। वे लंदन से पेरिस आए। उन दिनों एविग्नान में एक युवा नाट्योत्सव होने वाला था। पूरा नाट्योत्सव देखने और इतने समय मारने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। फ्रांस में अंग्रेजी भाषा को लेकर आम लोगों में जबरदस्त पूर्वाग्रह रहे हैं, आज भी खत्म नहीं हुए। अभी तो इनको फ्रेंच नहीं आती थी, इसलिए भाषा कठिनाई भी थी, लेकिन वे अपने विचलित निवर्धन कमाने के तरीके ढूंढते रहे। नाट्योत्सव जो देखना था इस प्रसंग में उन्होंने लिखा है, एविग्नान में मैंने अंगूर तोड़ने का काम शुरू किया। कमाई करके फेस्टिवल देखने के लिए मैंने मिलने वाले मेहनताने का हिसाब लगाया और कहा कि एक हफ्ते के समय मुझसे अमीर हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे घंटों के हिसाब से पैसा मिलता था। मैंने तय कर लिया था कि इतने अरसे तक स्वतंत्र और निश्चित रहूँगा, मैं इतने अरसे तक अंगूर तोड़ूंगा आदि आदि। लेकिन उसके बाद मैंने अनुभव किया कि मैं इतने लंबे वक्त तक लगातार काम नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा ही काम करने के बाद मेरी पीठ में दर्द होने लगता है और मैं आराम करने लगता हूँ और उतने वक्त का मेरा मेहनताना कट जाता। मैंने अच्छी तरह समझ लिया कि यह काम ताकत का नहीं आदत का है, लेकिन फिर भी हासिल होने वाली रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि इससे मुझे इतना काफ़ी पैसा मिल गया कि मैं सेंट सेबेस्टियन में होकर मैड्रिड और बार्सिलोना और थोड़ा सा स्पेन देखने और एक सप्ताह वहाँ गुजारने के बाद नाइस वापस लौट आऊँ। ये एक फ़ायदा था। दूसरा ये कि मैं बहुत सारे देशों के बहुत से युवा लोगों से मिला जो कि वहाँ इकट्ठे हुए थे। मैंने उनसे दोस्ती की और उनके पते ले लिए, जिससे मुझे हिच हाइकिंग में सहायता मिली। इस विदेश यात्रा के दौरान अभी तक अनेक दिलचस्प संस्मरण हैं, जहाँ उन्होंने दुस्साहस परिस्थितियों के बीच अपने संकल्प को पूरा करने के रास्ते खोज निकाले। इन प्रसंगों का महत्व इसलिए है कि और भी अधिक है कि वह अपने व्यक्तित्व का एक ऐसा पक्ष उपस्थित करता है जिससे अधिकांश तो लोग अपरिचित हैं। धन कमाने के लिए उन्होंने उस दौरान अनेक काम किए, रेडियो के लिए लिखना या विदेश के रात्रि क्लबों में छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाना, अनेक विदेशी कलाकारों के साथ मिलकर रात्रि क्लब में 15-20 मिनट की झलकियाँ पेश करना, कुछ ऐसा काम था जिससे उनके अनेक लेखक कलाकार व्यक्तित्व को किसी किस्म इनोवेशन का संतोष मिल सकता था। उन्होंने ऐसा किया और खूब किया। लेकिन जिस समय उनके पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ पर भी पलायन न करके हर तरह का काम करने के लिए प्रस्तुत रहना उनके व्यक्तित्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। इस यात्रा के दौरान हबीब तनवीर का एक और अनुभव बड़ा दिलचस्प है। यह प्रसंग उनके लिए यादगार इसलिए बन गया कि ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने कलाकार मन को समृद्ध करने का रास्ता ढूंढ निकाला और अंततः यह अनुभव बहुत बाद में उनकी एक नाटक प्रस्तुति का हिस्सा बन गया। एविग्नान से वे नाइस आ गए थे। पास में इतना पैसा भी नहीं था कि भरपेट कुछ खा सके। पैसा बचाकर आगे बढ़ने की फिक्र उन्होंने कई कोशिशें की, लेकिन सब में विफल रहे। हार कर समुद्र तट के किनारे बैठकर वे एक कविता रचने में लग गए। यह प्रसंग हबीब तनवीर के शब्दों में, समुद्र तट पर सुहाना समय था, मुझे वेश्याओं ने दिक करना शुरू किया। जवाब में मैंने कहा, देखो मेरी कोई इच्छा नहीं है और अगर होती भी तो मेरे पास पैसा नहीं है। फिर चली जाती, लेकिन फिर मुझे एक लड़का मिला अल्जीरिया का। वह चहलकदमी करता हुआ मेरे पास आया, बोला संवादात्मक रूप में, वंश आप क्या कर रहे हैं? कविता लिखने की कोशिश में अपना समय गुजार रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं। क्या आपके पास एक बियर है? मेरे पास एक रात का खाना खाने के लिए पैसा नहीं, मैं तुम्हें बियर या काफ़ी पेश नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ 10 पाउंड है। ओह, मैंने कभी अंग्रेजी मुद्रा नहीं देखी, क्या मैं एक नज़र देख लूँ? क्या मैं उसको महसूस कर लूँ? क्या मैं उसे एक यादगार के रूप में रख लूँ? नहीं, तुम नहीं रख सकते, मेरे और भुखमरी के बीच सिर्फ एक पैसा है। आप किस चीज में से लिख रहे हैं? कौन सा पेन है ये? एक माउंट ब्लैक है। क्या मैं इसे देख लूँ? क्या मैं इसे बतौर यादगार रख लूँ? मैंने सोचा, हिम्मत तो देखो क्या जीरा है। ये वो कुछ है जिसे मैं लिखता हूँ। इसके अलावा ये कीमती है, मैंने इसे उर्दू लिखने के लिए खरीदा है क्योंकि इसकी नीम मोटी है। ओह, क्या तुम गाते हो? हाँ। क्या तुम मुझे गाना सुनाना चाहोगे? हाँ। क्या तुम मुझे अल्जीरियाई गीत गाने का देने का वादा करते हो? हाँ। तो मैं तुम्हें एक हिंदुस्तानी गीत देने का वचन देता हूँ। उसने मुझे एक अल्जीरियाई गीत गाकर सुनाया, मुझे अच्छा लगा। मुझे उसकी झूमती लय पसंद आई, मैंने उसको सीख लिया और फिर मैंने उसे एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाकर सुनाया। उसे पसंद किया तो मैंने उसके गीत को सीखने में कुछ और समय लगाया। उसने भी मेरा गीत सीखने की कोशिश में कुछ समय लगाया। मैं नहीं जानता था कि वो अभी भी उसको याद करता है या नहीं। इस तरह रात बीत गई। सुबह के 4 बजे थे और ट्रेन का समय हो चुका था। मैंने उससे हाथ मिलाया और कहा कि अब तुम्हारे पास मेरी एक यादगार है और मैं वास तुम्हारी। इससे हम दोनों ही पहले से ज़्यादा गरीब नहीं हुए, दरअसल हम पहले से अधिक समृद्ध हो गए हैं। अलविदा। इस अल्जीरियाई युवक का चरित्र कितना दिलचस्प है। एक के बाद एक अपने पैतरे बदलता हुआ, जो कुछ नहीं मिल पाया उसे छीनने की कोशिश। अभी तनवीर ने संतुलन नहीं खोया, उसे छीनने नहीं दिया, कुछ खुद छीन लिया। एक गीत छीना, एक गीत दिया, हिस्सा बराबर। वह अल्जीरियाई गीत कितने वर्षों बाद भारत लौटने पर ये उनकी एक प्रस्तुति में काम आया। लाला शोहरत राय की प्रस्तुति में ऐसा फिट बैठा कि जैसा वहाँ कुछ और हो ही नहीं सकता था, एकदम मौजूद। यह सब दोहराने का मकसद सिर्फ इतना था कि इस प्रसंगों के माध्यम से हमें तनवीर के व्यक्तित्व का एक खास अंदाज देखने का मौका मिलता है। बहरहाल, अब उनके असली मकसद की ओर लौटा जाए। तरह तरह के अनुभवों और विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने संकल्प को पूरा करने में जुटे हुए थे, यूरोप के देशों में उनके खास जानने के बाद प्राग पहुंचे, जहाँ उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक डाकघर का कठपुतली प्रदर्शन देखने को मिला। चूंकि स्लोवाकिया में टैगोर वे भी कठपुतली कलाकारों के बीच जैन लुई वेराल्ड ने मुलाकात हुई, जो कि योगाभ्यास से प्रेरणा ले रहे थे। ऐसे अद्भुत अनुभवों से गुजरने के बाद भी अपने गंतव्य तक पहुंचे। उनके शब्दों में, प्राग के बाद मैं बर्लिन गया। मैं किसी तरह ट्रेन से सफर की व्यवस्था की, लेकिन हुआ ये, जब मैं बर्लिन पहुंचा तो कुछ सप्ताह पहले ब्रेस्ट का देहांत हो चुका था। यह बहुत निराशाजनक बात थी, लेकिन उनकी सभी रंग प्रस्तुतियाँ वहाँ थीं और मैंने उनके सभी नाटक देखे। मैंने दो बहुत प्रतिष्ठित निर्देशकों द्वारा कराई गई रिहर्सल भी देखी, जो मिलकर निर्देशन कार्य करते थे। वे ब्रिस्ट के खास शिष्य थे, एक ब्रिस्ट के दामाद थे और एक बहुत अच्छे अभिनेता तो वहाँ थे ही। वे भी उनके सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक थे। अर्नेस्ट ब्रूस मदर करीज नाटक में रसोइया थे, उत्कृष्ट गायक और एक अद्भुत अभिनेता। मैं वहाँ बर्लिन में 8 माह रहा, सभी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से मिला, उनकी कैंटीन में बैठा, बहुत सी बातों पर विचार विमर्श किया। काकेशियन चौक सर्किल भी देखा, कुछ चीनी एकांकी भी थी। मदर करेज उनकी रंग उत्पत्ति का समूचा स्वर्गाम, सिर्फ द गुड वुमन ऑफ सत्सुजा को छोड़कर मैं उसे नहीं देख सका, क्योंकि उस वक्त वह उनके रंग पटल पर नहीं था। बर्लिन ने एंसाबिल की नाटकों को देखने और ब्रेस्ट के सहकर्मियों के नाटक की विस्तृत चर्चा से हबीब तनवीर के मन पर नई रंग संवेदना की छाप छोड़ी। लेकिन वे ब्रेस्ट के सिद्धांतों और उनकी प्रस्तुतियों में भी अपने काम की चीज़ तलाशते रहे। ब्रेस्ट की रीति नीतियों या उनकी पद्धतियों का उन्होंने अनुकरण नहीं किया। समुचे यूरोप का थिएटर देखने के बाद उन्हें लगा कि पश्चिम का रंगमंच एक नई करवट ले रहा है। यथार्थवादी रंगमंच की गिरफ्त धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी और वहाँ के प्रमुख रंगकर्मी, जिनमें पीटर ब्रुक भी शामिल है, एक ज़्यादा असरदार, ज़्यादा अर्थवान और सामाजिक प्रतिबद्धता से अनुसूचित एक ऐसे माहौल की तलाश में थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हताश और कुंठित समाज को नई जीवन शक्ति दे सके। उस समय एक नए प्रयोगों के नाम पर स्त्रात्र, जियान, जेने, पैकेट, आइनेस्को आदि के नाटकों और उनके व्यक्तिवादी दार्शनिक सिद्धांतों में मान्यताओं ने हलचल मचा रखी थी। दूसरी ओर विघटनवादी विचारों के खिलाफ एक नई रंग चेतना उभर रही थी। ग्रेम ग्रीन कृत पावर एंड ग्लोरी जैसे जबरदस्त प्रोडक्शन भी हो रहे थे, जिसने यूरोप और मास्को तक में तहलका मचा दिया था। दूसरी ओर प्रगतिशील चिंतन ने बर्तोल्ट ब्रेस्ट को केंद्र में स्थापित कर लिया था। ये दो ध्रुव थे जिनकी टकराहट साफ सुनाई पड़ रही थी। पीटर ब्रुक जैसे लोग इन दोनों ध्रुवों के बीच कोई राह तलाशने इधर उधर झांकने लगे थे। अल्जीरियाई, ईरान, चीन, जापान जैसे देशों के पारंपरिक नाट्य रूपों का अध्ययन कर रहे थे। उस समय के यूरोपीय नाट्य चिंतन के बारे में हबीब तनवीर ने कहा, असल में उस समय यूरोप मशरक यानी पूरब की तरफ देख रहा था, इस उम्मीद से कि शायद इस तरफ से कोई रास्ता दिखे। चीन, जापान, इंडोनेशिया ही नहीं, अफ्रीका की ओर भी, शायद इसलिए कि इन मुल्कों के पास स्पिरिचुअल रिसोर्स, आध्यात्मिक संपन्नता ज़्यादा है। हमारा रीजनल थिएटर, ट्रेडिशनल थिएटर और देहातों का थिएटर ज़्यादा प्राणवान है। तो उस जमाने में से उस समय यूरोप गुजर रहा था। इन 1.5 वर्षों के भटकन में मैंने समझा कि थिएटर हिंदुस्तानी तरीके से थिएटर करने में ही हमारी आइडेंटिटी है, हो सकती है और कोई जगह बन सकती है। थिएटर को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, नकल करना नेहायत गलत है। हबीब तनवर की इसी रंग दृष्टि से वापस अपने देश आकर नए सिरे से इस विषय पर उन्हें सोचने के लिए बाध्य किया, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। यहाँ की परिस्थितियाँ, सामाजिक मूल्य, सामाजिक चेतना, भारतीय परंपराएं, सब सबका गहरा अध्ययन भी काफ़ी नहीं था। अपने उद्देश्य के अनुरूप नाटकों के चुनाव और उनको सही तरीके से मंचित करने वाले अभिनेताओं के अभाव में कुछ नहीं किया जा सकता था। यूरोपीय नाटकों को या उनके रूपांतरकारों को मंचित करने से हबीब तनवीर के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि सबसे प्रमुख सवाल था अपने समाज से जुड़े मूल्यों को नाटकों को मंचित करने की शैली खोज। इस नई किस्म की शैली की खोज कोई आसान बात नहीं थी। बहुत दूर जाकर देखा तो पारंपरिक रंगमंच की पुनः स्थापना जो आधुनिक संवेदना को संप्रेषित करने में सक्षम हो सके, एक दुस्साध्य काम था। यही हबीब तनवीर का मंतव्य था। इसके लिए वे अपनी जड़ों की तरफ देखने लगे। नाटक के शब्दों के अर्थों की पूरी शक्ति के साथ संप्रेषित करने के लिए नई भंगिमाओं, नई मुद्राओं, नई तंत्र, नई तकनीकों की जरूरत थी। पारंपरिक नाटक रूपों में जो कुछ नजर आ रहा था वह आश्वस्त तो करता था, लेकिन उसकी चुनौतियां जबरदस्त थीं। मोटे तौर पर पारंपरिक रंगमंच के कुछ तत्वों को लेकर वे आशान्वित थे, लेकिन उन्हें व्यवहारिक रूप देना या क्रियान्वित करना टेढ़ी खीर थी। इन सभी चुनौतियों के बावजूद उनके जीवन में एक बात साफ थी, उनके शब्दों में, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात बिल्कुल साफ थी कि सांस्कृतिक रूप से मैं हिंदुस्तान का ही हूँ। अगर आप शब्द और संस्कृति से संबंधित काम में लगे हैं तो आप वहीं के हैं जो आपका मूल स्थान है, जहाँ से आप आए हैं, क्योंकि वही वो जगह है जहाँ आप सबसे ज़्यादा अपनी सृजनात्मकता दिखा सकेंगे। परदेश की हवाओं ने हबीब तनवीर के अंतर्मन में रची बसी देसी गंध को और अधिक महका दिया।